सिद्धेज्य ओम नमः सिद्धेज्य ओम नमः सिद्धेज्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वर्चायाणम् नमो लोए सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूवृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार सूत्र है जो आचार्य उमा स्वामी ने लिखा हुआ है, उसके दूसरे अध्याय की बात हमारी चल रही है। इसमें जीव के असाधारण भावों की चर्चा हो रही है। हमने असाधारण भावों के नाम देखे थे, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। उस संबंध में हम हिंदी 180 पृष्ठ पर जो देख रहे हैं, ये जो हमारे हाथ में मोक्ष शास्त्र है, रामजी भाई ने लिखी हुई टीका, उसमें हम चार नंबर का हमने देखा था, सार्वशमिक भाव, पांच नंबर को देखा था हमने। देखो, पांच नंबर को पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर, ये कंडीशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी कल्पना से आत्मा को चाहे जैसा मान लेते हैं और फिर आगे के जो कुछ प्रयत्न है, जैसे ध्यान करने आदि के, वो करने लगते हैं और मान लेते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। तो जो का त्यों श्रद्धान कहा है, किसका? तत्वों का। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, ये जो सात तत्व है जिसको प्रयोजनभूत तत्व कहे हैं, उनमें से जीव तत्व यानी मैं स्वयं जो ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव तत्व हूं, ये अन्य तत्वों से भिन्न हूं। अजीव तत्व से तो भिन्न सभी कहते ही कहते हैं, परंतु आश्रव तत्व जो है, रागादि भाव जो है, मोह राग द्वेष जो जीव के है, उनसे भी वो उसका जीव तत्व भिन्न है। तो आश्रव बंध संवर निर्जरा यहां तक कि मोक्ष तत्व, अभी उनको हम भावों की अपेक्षा बताना चाहते हैं, तो मैं यानी ये पारिणामिक भाव, वो मैं, उसमें जीव तत्व है ना, वो अनादि अनंत कायम रहने वाला शुद्ध चैतन्य रूप, ऐसा जो भाव है वह मैं हूं, ऐसे उसमें मैं स्थापित करना है। और जो अन्य पर्याय रूप भाव है वो क्षणिक है, पहले नहीं थे, अभी उत्पन्न हुए हैं, या रागादि भाव है वो मिटने वाले हैं, ऐसे जो औपशमिक भाव है, क्षौपशमिक भाव है, क्षायिक भाव है और औदयिक भाव है, उस रूप मैं नहीं हूं, ऐसा जब निश्चित करेंगे तो हम कहेंगे आत्मा को यथार्थतया समझकर। ये बात बहुत महत्व की है। फिर क्या कहता है, जब जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है, आश्रय लेना का अर्थ होता है उसी में एकाग्र होकर स्थिर हो जाना, उसी को जानते रहना। हम कहते हैं हम तो ज्ञाता दृष्टा होकर सबको जानते रहते हैं, परंतु सबको यानी किसको जानते रहते हैं? दूसरों को। समझ रहे ना? तो दूसरों को कैसे जानना था? तो ये मैं नहीं हूं ऐसा जानना था, पर हम तो ज्ञाता दृष्टा है ना, बस इसको जानो, उसको जानो, उसको जानो, ये जानना नहीं कार्य करे। तो उनसे मैं भिन्न हूं ऐसा समझकर पहले तो भेद करना पड़ेगा, ये पर है, ये मैं हूं। और फिर जो पारिणामिक भाव मैं हूं ऐसा स्वीकार किया है, उसी का आश्रय लेना है, उसी को जानते रहना, उसी में एकाग्र होना। तो जब पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है, तब औदयिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है। अभी हमने यहां इतने औदयिक भाव लिखे है, एक है गति औदयिक भाव, एक है चार कषायों में से एक औदयिक भाव है, एक है वेद है, लेशा है, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। मेरा ऐसा प्रश्न है, इनमें से कौन सा औदयिक भाव पहले में पहले दूर होगा? हाँ बेन, पीछे आप बताना। ये जो औदयिक भाव है ना, एकदम सभी के सभी नहीं मिटेंगे। जीव सम्यक दर्शन होते ही सिद्ध नहीं बनेगा या अरिहंत नहीं बनेगा, क्रम से वो गुणस्थानों की परिपाटी से ऊपर चढ़ेगा। तो ये जो यहाँ आठ ग्रुप लिखे हैं औदयिक भावों के, मिथ्यात्व दशा में ये आठ प्रकार के औदयिक भाव होते हैं, आठ होते हैं ना मिथ्यात्व में, तो उसमें से कौन सा औदयिक भाव पहले नष्ट होगा? हाँ, आप कहते कषाय, आप क्या कहते भाई? मिथ्यात्व। और किसी को कोई अन्य कहना है? चला बेन, मिथ्यात्व पक्का नहीं है? हम जोर से बोलो ना। हाँ मिथ्यात्व बोलो तो भाग जाएगा जल्दी। तो जब पारिणामिक भाव का आश्रय लेते, आत्मा को सच्चा समझकर यथार्थ समझकर पारिणामिक भाव का आश्रय लेते ही औदयिक भाव दूर होना प्रारंभ होता है, यानी मिथ्यात्व हट जाता है। और हम क्या प्रयत्न करते हैं? पहले में पहले कषाय कम करना चाहते हैं। ये कषाय नाम का औदयिक भाव कौन से गुणस्थान तक हो सकता है, थोड़ा गेस करो। अभी गुणस्थान का अभ्यास नहीं हुआ है, फिर भी कल वो कहां से कहां तक क्या क्या होते हैं हमने देखा था ना, कौन से गुणस्थान के से कौन से गुणस्थान तक। हाँ बोलो बिन, दसवें तक कषाय नाम का औदयिक भाव दसवें तक है। और हमारा प्रयत्न क्या होता है? पहले कषाय कम करो, क्योंकि हमें मालूम नहीं ना, ये हम अपनी बुद्धि से अर्थ लगाते हैं। यहाँ क्या करते पहले में पहले, नहीं ऐसा स्थिर बैठना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए, नाक के अग्रभाग तक दृष्टि लगानी चाहिए, शांत हो जाइए, ये ऐसी ऐसी बातें हम आत्मा की अनुभूति करने के लिए क्या कहते हैं, सुख चाहे दुख तय भयवंत। और हम कोशिश भी करते हैं कि आत्मा का अनुभव हो जावे, परंतु होता नहीं है, तो फिर हम बहुत थक जाते हैं और जाने दो अभी क्या है, नहीं होता है, ऐसे करके अरुचि हो जाती है, क्योंकि हमने सही मार्ग नहीं अपनाया। तो यहाँ हमें ये सही मार्ग बता रहे हैं। तो कहते देखो लिखा यहाँ क्या है, औदयिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है और पहले श्रद्धा गुण का औदयिक भाव दूर होता है। क्या लिखा? श्रद्धा गुण का औदयिक भाव। श्रद्धा में कर्म के उदय के अनुसार होने वाला भाव कौन सा अभी हमने देखा जो दूर होता है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है कल हमने देखा था, वो श्रद्धा गुण का विभाव भाव है, उसका औदयिक भाव है। यह औपशमिक भाव सिद्ध करता है अनादि मिथ्या दृष्टि को। सबसे पहले औपशमिक सम्यक तो होता है, यानी वहां मिथ्यात्व कर्म दब जाता है, उदय का अभाव हो जाता है और जीव को यहां सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अब छठा पॉइंट, सच्ची समझ के बाद। देखो सच्ची समझ यानी क्या, अभी आत्मानुभव हुआ है, औपशमिक भाव उसको प्रकट हुआ है, औपशमिक भाव या औपशमिक सम्यक तो अंतर मुहूर्त तक टिकता है, उसके बाद वो क्षोक्षम सम्यक दृष्टि हो जाता है। जब इसके सच्ची समझ आ जाती है, उसके बाद जैसे जैसे सत्य पुरुषार्थ को बढ़ाता है, सत्य पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या करता है वो? हाँ नीरेन भाई, व्रत अंगीकार करता है कि नहीं करता? पुरुषार्थ करने ने क्या करना? हाँ बेट,
प्रयत्न करना है
किसका, आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको?
आपने बताया जो तप है, व्रत है, नियम है।
हाँ व्रत है, तप है, नियम है। कला बेन क्या कहती है? हाँ आगे बढ़ने का कार्य शुद्धोपयोग में होता है। देखो मोक्ष का पुरुषार्थ अलग होगा और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ अलग होगा, ऐसा नहीं है। जीव को एक ही पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? आत्मा को सही पहचान कर उसी में एकाग्र हो जाना है, यही पुरुषार्थ है। इसके अलावा अन्य पुरुषार्थ है ही नहीं है। जब जीव अंदर अपने आप में एकाग्र हो जाता है, शुद्धोपयोग में उसके गुणस्थान बढ़ते हैं। अब पूरे 24 घंटे तो शुद्धोपयोग में रहेगा नहीं, जितनी जितनी उसकी अंतरंग स्थिरता बढ़ती है, तो जब वो अंतरंग में स्थिर नहीं है, शुद्धोपयोग में नहीं है, तब सहज ही उसको शुभोपयोग के भाव अधिक अधिक आते हैं। ऐसा उल्टा नहीं कि शुभ किया इसलिए वो शुद्धों में गया। हम ऐसा समझते हैं ना, शुद्ध में नहीं जा सकता तब तक क्या करना चाहिए, शुभ करना चाहिए ना, ये प्रश्न बहुतों का होता है। यहां की बात नहीं, वहां भी सब जगह यही प्रश्न है, जब तक नहीं होता तब तक क्या करना चाहिए, तो शुभ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक शुद्ध का ही प्रयत्न करो ना, शुभ के पीछे क्यों लगते हैं। जब तक वीतराग नहीं होते तब तक राग करना चाहिए कि नहीं चाहिए, जब तक सुखी नहीं होते तब तक दुखी होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये चाहिए की बात है, चाहिए में हमारा श्रद्धा यानी अभिप्राय का दोष है। शुभ आएंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं है शुभ छोड़ दो ये कोई नहीं कह रहा, पर शुभ होना ही चाहिए वाली जो उस पर जोर है ना, ये हमारे मिथ्या अभिप्राय बताता है। हमारे प्रश्न में ही हमारे अभिप्राय सब छुपे हुए होते हैं। तो जब कोई पूछता है कि करना चाहिए ना, तो उसको किसका पक्ष आया है अभी, शुभ का, क्योंकि शुभ करने से मैं थोड़ा आगे जल्दी बढ़ जाऊंगा, ऐसी उसकी मान्यता है। इस मान्यता का निषेध है, शुभ का निषेध नहीं है। फिर सुनना, शुभ से वीतरागता होती है या शुभ से शुद्ध उपयोग होता है, इस मान्यता का निषेध है, शुभ का निषेध नहीं है। बहन समझ में आया रही है? क्यों बहन? नियति बहन ना, समझ में आया शुभ? फिर जैसे हम शुभ भाव कर रहे हैं, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, राइट? तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि शुभ नहीं, शुभ मत करो। हम क्या कह रहे हैं, हमने आचार्य क्या कह रहे हैं कि शुभ से यानी शुभ करते करते शुद्ध उपयोग होगा, ये जो हमारी खोटी मान्यता है, ये खोटी मान्यता का निषेध है। हमें क्या सुधारना है? मान्यता। पहले में पहले चेंज कहाँ होगा? मान्यता में। हम चेंज कहाँ करना चाहते हैं? आचरण में, क्रिया में कुछ चेंज करना चाहते हैं। ये क्रिया तो शुभ भाव भी नहीं है, क्रिया इटसेल्फ जड़ की क्रिया है, उससे तो शुभ भाव होना अलग है, और ये शुभ भावों से भी यहां जो मान्यता है वो अलग बात है। तो पहले में पहले मान्यता सुधरती है, और बाद में ये जो कोई यथा योग्य जो जिस स्टेज पर है, जितनी एकाग्रता है, वैसे वैसे शुभ भाव आते हैं। मुनियों को भी शुभ भाव आते हैं कि नहीं आते? क्योंकि हमने देखा ना 28 मूल गुण पालन करने का जो राग है वो शुभ राग है, मुनियों के भी शुभ राग आते हैं। हमें जितने शुभ राग आते हैं उससे भी उच्च क्वालिटी के शुभ भाव आते हैं, उनको तो पुण्य का बंध बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या वे पुण्य का बंध चाहते हैं? नहीं चाहते वे। ऐसे ऐसा बंध होते हैं मुनिराजों को कि ऊपर ऊपर के स्वर्गों की आयु बनती है। अभी यहां मुनिराजों का गुणस्थान हमने कौन सा देखा था कल? सामान्यपने छठा सातवां गुणस्थान होता है। अब ऊपर देव गति में जाते हैं, क्योंकि सभी मुनिराज जो है वो मरकर देव गति में ही जाते हैं, क्योंकि छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत है, तो मरण के बाद कहां जाएंगे? स्वर्ग में जन्म लेंगे। जितना पुण्य भाव ज्यादा होगा उतने ऊपर के स्वर्ग में जन्म लेंगे, जितने ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे वहां उनकी सागरों की आयु और अधिक अधिक होगी। पहले दूसरे स्वर्ग में दो सागर होगी तो ऊपर के स्वर्गों में और बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। तो ऊपर के स्वर्गों में जाना अच्छा कि बुरा?
कम होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बढ़ रहे हैं आगे,
आगे बढ़ रहे तो ऊपर के स्वर्गों में आयु बड़ी है। सबसे ऊपर का जो सर्वार्थ सिद्धि का स्वर्ग है वहां की आयु कितनी है? 33 सागर। पहले स्वर्ग में जाते तो दो सागर में नीचे आ जाते, अब ये 33 सागर से अभी जो 11वें गुणस्थान तक का जिसने पुरुषार्थ किया पूर्ण वीतरागे और वहां जिसका मरण हुआ वो 33 सागर वाले सर्वार्थ सिद्धि में जाते हैं। वहां का गुणस्थान कौन सा होता है जयाबेन? चौथा, उसके ऊपर नहीं है। यहां 11वें गुणस्थान में थे, कहीं से भी समझो आप 7वें से 11वें, और वहां पहुंचे चौथे गुणस्थान में, और इतने सागर वर्षों तक चौथे में रहे। अभी कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है या कॉलेज में गया और उसको फेल करके चौथे में भेज दिया और वहां बस बैठो सालों तक, कैसा लगेगा?
संसार घटाने के लिए काम प्रसार शुरू किया था और संसार बढ़ा के
हाँ, ये सच्चे पुरुषार्थ के साथ पुण्य भी हुआ ना, तो ये पुण्य भोगे बिना छुटकारा नहीं है, बढ़ गया, ऐसा ही है। संसार का समय बढ़ गया क्योंकि अंतरंग में स्थिरता नहीं होती है, या कुछ कारण अभी आयु बंधी है उनकी पहले से, तो ये तो ऐसी बातें होती रहती है, क्या करे ऐसा ही है। पुण्य पाप, हमें तो पुण्य अच्छा लगता है बहुत, परंतु ये पुण्य के जो पुण्य के फल में चक्रवर्ती होता है तो उसको नहीं, मैं पहले चक्रवर्ती नहीं होगा, मुझे चाहिए नहीं, मैं अभी जाके दीक्षा ले लूंगा, नहीं होगा उसको, तो वो पूरा चक्रवर्ती पद भोगना ही पड़ेगा। वो चाहता नहीं है, सम्यक दृष्टि है, अंदर से उसको ऐसे ताला वेली है कि मैं अभी कब अपने में स्थिर हो जाऊंगा, फिर भी वो सारा जो चक्कर है पुण्य का वो भोगना पड़ेगा उसको। ये पुण्य तो ये बढ़ा रहे हैं संसार उसका। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखो कि सच्ची समझ के बाद जीव जैसे जैसे सत्य पुरुषार्थ को बढ़ाता है वैसे वैसे मोह अंशतः दूर होता जाता है। सच्ची समझ यानी श्रद्धा गुण तो अभी सम्यक हुआ है, अभी और अंतरंग स्थिरता करता है तो क्या होता है, मोह अंशतः, यहां किस मोह की बात है, चारित्र मोह की। अभी चौथे गुण स्थान में उसका अनंतानुबंधी दूर हो गया है, अभी तीन कषाय चौकड़ी है ना, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये तीन कषाय चौकड़ी अभी उसके है चौथे वाले के। जितना जितना अंतरंग में स्थिर होगा उतने उतने एक एक कषाय चौकड़ी उसके घटती जाएगी। पांचवे में गया तो दो ही कषाय चौकड़ी रही, अभी छठे सातवें में उसके और एक गई, संज्वलन रह जाता है, और ऊपर के गुणस्थानों में श्रेणी चढ़ता है तो ये भी मंद होते होते ग्यारहवें में वो नहीं रहता, बारहवें में नहीं रहता। ये अंतरंग स्थिरता से होता है, अंतरंग स्थिरता जितनी बढ़ती है तो बाह्य में सहज में ही वो मुनि योग्य भाव होते हैं, उनके 28 मूल गुण पालन करने के भाव सहज होते हैं। परंतु ऐसा उल्टा क्रम नहीं है कि बाहर से व्रत लिए इसलिए वो बढ़ा, ऐसा नहीं है। जो आगे बढ़ने का जो पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ जो है वो अंतरंग में होता है। विभाव रूप पुण्य करना ये पुरुषार्थ नहीं कहलाता, पुरुषार्थ किसको कहेंगे, अंतरंग में जो स्थिरता वाला है शुद्धोपयोग उसको हम पुरुषार्थ कहेंगे। इसलिए सत्य पुरुषार्थ कहा, क्योंकि पुरुषार्थ तो अलग प्रकार का है, जो मिथ्यात्व करता ही रहता है नरक में जाता है वो भी उल्टा पुरुषार्थ कर रहा है, कैसा, नरक का पुरुषार्थ कर रहा है। परंतु यहां हमें सत्य पुरुषार्थ की बात चल रही है।
क्षावक्षमिक भाव साबित करता है इसका क्या मतलब?
देखो इसका अर्थ ऐसा है, हाँ यहां जो क्षावक्षमिक भाव सिद्ध करता है लिखा है, ये जो जिसको हम क्षावक्षमिक चारित्र की बात है उसको यहां लिया है, क्षावक्षमिक सम्यक्त्व की बात है उसको यहां पर लिया है। अनादि से क्षावक्षमिक भाव था वो ज्ञान संबंधी था, अभी जो क्षावक्षमिक भाव सच्ची समझ के बाद वाला जो लिया है और मोह अंशतः दूर होने की बात की है वो क्षावक्षमिक चारित्र की बात है, छठे सातवें गुणस्थान की बात है, उसका क्षावक्षमिक चारित्र है यहाँ पर।
क्योंकि वो नंबर चार वो
देखो देखो चार नंबर पर भी जो जड़ नहीं होता वहां भी क्षावक्षमिक भाव लिया था, वो ज्ञान में लगाना, और यहां जो क्षावक्षमिक भाव सच्ची समझ के बाद वाला है उसमें क्षावक्षमिक सम्यक्त्व, संयमासंयम और सराग चारित्र तीनों को ले सकते हैं, तीनों आ जाते
हैं।
पहले तो हमने देखा था ना, ऊपर लिखा है ज्ञान दर्शन वीर्य, उसका आंशिक विकास ये चौथे नंबर में देखा था हमने। अब ये देखो सात नंबर का, यदि जीव प्रतिहत भाव से पुरुषार्थ में आगे बढ़ता है तो चारित्र मोह स्वयं दब जाता है, उपशम को प्राप्त होता है, यह औपशमिक भाव सिद्ध करता है। ये उपशम श्रेणी की बात है,
जो दूसरा वाला
औपशमिक जो भाव है ना, औपशमिक एक होता है सम्यक्त्व और एक होता है औपशमिक चारित्र, चारित्र मोहनीय को दबाते दबाते ऊपर चढ़ता है। छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज है, अभी ध्यान में लीन हो गए, तो ध्यान में लीन होते तो ऐसे सोच समझ कर अभी उपशम श्रेणी करना है क्या, शपक श्रेणी चढ़ना, ऐसी कोई बात नहीं होते, बस वे अंतरंग में लीन होते हैं और सहज रूप से जैसा जैसा पुरुषार्थ होगा वैसे उसके 8, 9, 10, 11 या 8, 9, 10, 12 ऐसे गुणस्थान प्रकट होते हैं। उसमें भी कर्णानुयोग के कुछ निमित्त संबंध बन जाते हैं, जैसे जो वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला होना चाहिए, आयु का बंध नहीं किया हुआ ऐसा जीव हो तो ही क्षपक श्रेणी चढ़ेगा, जिसने आगे वाली देवायु बांध ली है उसका तो कोई क्षपक श्रेणी चढ़ने की बात ही नहीं होती, क्योंकि उसका एक भाव अभी बाकी है ना, देव का भाव और फिर है, और एक मनुष्य भाव करके फिर मोक्ष चला जाएगा, ऐसी ऐसी बातें उसमें होती है।
यहाँ चारित्र मोह दबना मोह तो उसमें संज्वलन कैसा है कि बात
है, हाँ जो दबने वाला जो है, हाँ उसको दबाते दबाते उसको उपशम करते ऊपर चढ़ते हैं। अब 8 नंबर का, वहां तो प्रतिहद भाव कहा है, क्योंकि क्या है नियम से क्या होता है, छठे सातवां गुणस्थान था, सातवें के बाद आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां हुआ, उसका काल लिमिटेड है अंतर्मुहूर्त, फिर नियम से ग्यारहवें के बाद दसवां नौवां आठवां सातवां और छठा, जैसे क्रम से ऊपर चढ़ते वैसे क्रम से नीचे आते हैं, इसको एक्सेप्शन एक ही, बीच में कहीं पर भी मरण हो जाए तो वो जीव चौथे गुणस्थान में जाकर देवगति में जन्म लेता है, ये मरण का एक्सेप्शन है, अदरवाइज इसका काल लिमिटेड है। देखो छठे गुणस्थान का जितना अंतर्मुहूर्त का काल है, पूरे सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां और फिर वापस रिटर्न टू छठा गुणस्थान, इतना पूरा काल इतना छोटा है कि छठे गुणस्थान के काल से भी ये पूरा मिलकर भी अंतर्मुहूर्त छोटा है, तो पूर्ण श्रेणी चढ़ के उतरने का अंतर्मुहूर्त छठे गुणस्थान से भी छोटा काल है, इतने कम काल में वो पूर्ण वितरागी होकर फिर नीचे आ जाता है, और वहां बहुत सारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है। अब ये जो अप्रतिहत पुरुषार्थ है ने भी क्षायिक क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव को लिया है, 8 नंबर प्रतिहत यानी फिर नीचे आना जो छूट जाता है, और अप्रतिहत यानी बिना छूटने वाला जो ऊपर ही ऊपर चढ़ता है नीचे नहीं गिरता, उसको अप्रतिहत कहा है, यानी अभी आगे अरिहंत अवस्था प्राप्त करके मोक्ष ही प्राप्त करेगा, उसको कहते हैं अप्रतिहत। हत होना यानी नष्ट हो जाना, देखो अप्रतिहत पुरुषार्थ से पारिणामिक भाव का अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने पर, यानी अंतरंग में बिल्कुल ऐसे जम जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं कि केवल ज्ञान ही प्राप्त कर छुटका, तो बढ़ाने पर विकार का नाश हो सकता है, ऐसा क्षायिक भाव सिद्ध करता है। फिर 9वां नंबर, यद्यपि कर्मों के साथ का संबंध प्रवाह से अनादिकालीन है, कर्मों के साथ हम अनादि से बंधे हुए हैं, परंतु वे ही वे कर्म पार्टिकल्स नहीं है, नए नए का बंध होता है पुराने छूट जाते हैं, फिर नए उसी समय नए का बंध हो रहा है पुराने छूट जाते हैं, कर्म कर्म रूप से तो अनादि का है परंतु वे के वे कर्म नहीं, वो चेंज होते जाते हैं। जैसे हमारे गांव में नदी है, वो तो 25 साल से हम वही की वही नदी वैसी की वैसी देख रहे हैं, परंतु उसका पानी निरंतर, वो जो पानी वो बहता है आगे चला जाता है, नया पानी उसमें आता है। इसी तरह कर्म भी प्रवाह रूप से अनादि से है, परंतु नए नए कर्म आते हैं। यहां लिखा है तथापि प्रति समय पुराने कर्म जाते हैं, जाते हैं फिर जाते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति पूरी होती है, और नए कर्मों का संबंध होता रहता है। इस अपेक्षा से कर्मों के साथ का वह संबंध सर्वथा दूर हो जाता है, यह क्षायिक भाव सिद्ध करता है। क्षायिक भाव यानी क्या, जैसे हमने क्षायिक सम्यक तो किसी जीव ने प्राप्त किया, तो उसके जो दर्शन मुनि और अनंतानुबंधी कर्म थे, पहले बंधे हुए थे, कभी उसने उसको उपशमित भी किया था, अभी क्षय किया का अर्थ क्या है, सत्ता में जितने थे वो सारे नष्ट हो गए, एक बार नष्ट हो गए तो फिर उसका बंधने का सवाल नहीं आता, इसको कहते हैं क्षायिक भाव। जैसे औपशमिक सम्यक तो होकर फिर छूट सकता है जीव, मिथ्यात्व में जा सकता है, क्योंकि कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, क्षायोपशमिक सम्यक तो होने पर भी छूटकर जीव मिथ्यात्व में जा सकता है, क्योंकि वो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, और जब फिर दोबारा मिथ्यात्व में जाता है तो फिर दोबारा मिथ्यात्व कर्म का बंध भी चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो हो गया, अभी छुट्टी, अभी तो कुछ भी करो कैसा भी स्वच्छंद करो, ऐसा नहीं है, जीव के परिणाम बिगड़कर वो फिर दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। तत्व का श्रद्धान हुआ, फिर दोबारा अतत्व श्रद्धान ही हुआ, आत्मा का अनुभव कर ही लिया था परंतु ऐसे कोई परिणामों में फेरफार हुआ कि फिर चला गया मिथ्यात्व में, तो आप कहेंगे फिर क्या फायदा है ना, आपने क्या कहा, क्या फायदा है के लिए कुछ, हाँ कच्छ कच्छ का कुछ का
खटे जो करो
खटे जो करो
खट्टे जो करो करो अच्छा उसका क्या फायदा, हम अपनी हिंदी में बोलेंगे तो इससे क्या लाभ। तो ऐसा है, एक बार सम्यक तो होकर छूट भी जाए किसी जीव का, हम मान लेते हैं हर जीव का छूटता ऐसी बात नहीं है, परंतु किसी जीव का एक बार सम्यक तो होकर छूट भी जाए तो अभी वो अधिक काल संसार में नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन वाला जो काल है, अभी उसका पुद्गल परावर्तन क्या है वो हम देखेंगे आगे। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में वो नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा, एक बार होकर छूटेगा और मिथ्यात्व में चला गया, निगोद में भी चला गया, अनंत काल निगोद में भी बिताया, तो अभी वहां कायम के लिए रहने वाला नहीं है, अभी उसके संसार का किनारा आ गया है। आप किनारा कहते हो, है तो अनंत काल, ये अर्ध पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल है जिसमें अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी चली जाती है, फिर भी उससे अधिक काल ये जीव संसार में नहीं भटकेगा, यह भी गारंटी है, इसलिए कहते हैं उसको। और उसका नहीं समय को छूटता है तो थोड़े भवों में वो मोक्ष चले जाता है। तो समय दर्शन के पहले सोचना हो करना है कि नहीं करना है, ये संसार के मजे छूट जाएंगे सब, चलेगा कि नहीं सरलाबेन? संसार में मजा है क्या? संसार में मजा है कि नहीं पहले ये सोचो। जो तीर्थंकरों को नहीं दिखा मजा, और संसार है ना, गृहस्थी छोड़कर चले गए, चक्रवर्ती को भी कोई मजा नहीं आया, और वो भी चक्रवर्ती पद, उसके पास क्या नहीं था? छह खंडों में जो कुछ पॉसिबल वो सब उसका अधिपति था कि नहीं? सबको छोड़ दिया, 96,000 रानी और जितने पुत्र पुत्री और जो कुछ होते हैं वो सबको छोड़ के मुनि दीक्षा लेकर जंगल में चले गए और अपने अंतरंग में लीन हो गए। भरत चक्रवर्ती जो है वो दीक्षा लेने के बाद एक अंतर्मूर्त में तो केवल ज्ञान प्राप्त किया, कैसा अपूर्व पुरुषार्थ होगा। परंतु देखो ऐसा नियम है, जो चक्रवर्ती पद पर ही उसे भोगते भोगते मरता है वो नियम से सातवें नरक में जाता है, और जो चक्रवर्ती पद छोड़कर मुनि अवस्था धारण करते अपनी आत्मा की साधना करते हैं उसमें तो मेजॉरिटी तो मोक्ष चले जाते हैं, कुछ स्वर्ग में भी जाते हैं, उनके और थोड़े भव बाकी है तो फिर दोबारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं,
यहाँ ये 8 और 9 में ये क्षायिक भाव सिद्ध करता है, सिद्ध प्रूफ करता है, वो उसका क्लियर नहीं हुआ है।
हाँ देखो देखो, क्षायिक भाव सिद्ध करता है, क्षायिक भाव आपको ये बताता है कि जो जीव अप्रतियत पुरुषार्थ करता है और पारिणामिक भाव का अच्छी तरह आश्रय लेता है उसका विकार पूर्णतः नाश हो जाता है, नाश हो जाता, विकार पूर्णतः नाश हुआ, और कर्मों की भाषा में कहेंगे तो कर्म का पूर्णतः क्षय हो गया। ये बात हमें क्षायिक भाव से सिद्ध हो जाती है, क्षायिक भाव सिद्ध करता है ने? ये बातें क्षायिक भाव को नहीं सिद्ध करते, क्षायिक भाव के द्वारा हम इसको जान सकते हैं। क्षायिक भाव देखो, पारिणामिक भाव क्या है? तो जीव का अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, ये हमने हर एक में देखा है ना, कौन सा भाव क्या सिद्ध करता है ये बात हमने देखी थी।
यहाँ जरा ये स्ट्रांग लगता है, बताता है तो बताता है,
उसका कारण ऐसा है कि लिखने वाले रामजी भाई ना वो वकील है, तो ये साबित करता है,
साबित करता है दलील, हाँ
वकील की लैंग्वेज है सब,
तो ये है ही ऐसा। हाँ पहले ही उन्होंने बता दिया था पांच भाव क्या सिद्ध करते हैं, क्या बताते हैं, पहले ही लिखा है। देखो ये इसका टाइटल पेज पहले पेज पर यहाँ लिखा है, ये पांच भाव क्या बताते हैं, तो क्या प्रूव करते हैं, ये प्रूव क्या करते हैं, ये बात है, क्या सिद्ध करते हैं, यानी इनके जानने से कौन सी बात सिद्ध होती है। ऐसा 9 नंबर देखो, ये हो गया सिद्ध करता है, नौ नंबर में फिर लिए देखो, यद्यपि कर्मों के साथ का संबंध प्रवाह से अनादिकालीन है तथापि प्रति समय पुराने कर्म जाते हैं, नए कर्मों का संबंध होता रहता है, इस अपेक्षा से कर्मों के साथ का वह संबंध सर्वथा दूर हो जाता है, यह बात क्षायिक भाव सिद्ध करता है, ऐसा है। अब 10वां नंबर, कोई निमित्त परमे विकार नहीं करता, ये जो विकार हो रहा है वो निमित्त ने नहीं कराया है, जीव स्वयं विकार करता है और न परमे विकार कराता है। ये करता है छप गया है, वो कराता करना हिंदी वाले, अभी पता नहीं आपके हिंदी में क्या है, नहीं कराता है, न परमे विकार कराता है, न करता है न कराता है, किंतु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है। यानी ये जीव का अपना दोष है, सामने कर्म निमित्त है परंतु कर्म उसको जबरदस्ती से नहीं कराता है। जब जीव पारिणामिक भाव रूप अपने द्रव्य स्वभाव सन्मुख होकर के स्वाधीनता को प्रकट करता है, तब अशुद्धता दूर होकर शुद्धता प्रकट होती है। क्या कहना चाहते हैं कि निमित्त है, औदयिक भाव है, परंतु वो जीव स्वयं करता है, निमित्त ने इसको जबरदस्ती औदयिक भाव नहीं कराया है, एक बात, तो वो विकार करने में भी स्वाधीन है। और जब स्वयं अपने पारिणामिक भाव का लक्ष्य करता है, आश्रय लेता है, तो शुद्ध भाव प्रकट होता है, औपशमिक भाव प्रकट होता है, वो भी स्वाधीनता से करता है। यदि पराधीन मानेंगे तो हमको राह देखनी पड़ेगी, कर्म कब दूर हो गए और हमको कब वो सम्य दर्शन हो जाएगा, हम कौन निमित्त मिलेगा उपदेश देने वाला, हमको कहाँ जन्म लेना पड़ेगा विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर की बात सुनने में, और फिर हम अपना पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे ऐसे पराधीनता के विचार से जीव त्रस्त हो जाता है, चिंतित हो जाता है, आकुलित हो जाता है। जब उसके स्वयं की योग्यता स्वाधीनता है उसके, तो उसके निमित्त भी सहज रूप से मिल ही जाते हैं। जीव स्वयं अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तो अनादि से वहां कर्मों लगातार उदय रूप थे ना, वो अपने आप उपशमित हो जाते, उसके लिए जीव को कुछ नहीं करना पड़ता, जीव कर ही नहीं सकता। जीव का पुरुषार्थ तो जीव में चलता है, पर में किसी का पुरुषार्थ चलता ही नहीं है। तब अशुद्धता दूर होकर शुद्धता प्रकट होती है। ऐसा औपशमिक भाव, साधक दशा का क्षायोपशमिक भाव और क्षायिक भाव, ऐसे तीसरा भी नाम डालना, वहां तीनों सिद्ध करते हैं। कौन से? साधक दशा कहां से होती है? चौथे गुणस्थान से। तो चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन होता है वो कौन से टाइप का होता है? औपशमिक होता है, क्षायोपशमिक होता है कि क्षायिक होता है? हाँ बेन, आपको पता है? हाँ, आप ही को नहीं पता। देखो, सम्यक यानी सम्यक दर्शन, श्रद्धा गुण की स्वभाव रूप पर्याय, यानी तत्व का श्रद्धान हुआ है। हमने क्या देखा था? अनादिकालीन जो मिथ्या दृष्टि है उसको सबसे पहले होता है तो कौन सा सम्यक होता है? औपशमिक। उसका काल तो अंतर्मूर्त का ही है, अंतर्मूर्त के बाद वो क्षयोपशमिक हो जाता है या कोई अन्य अन्य उसके रास्ते है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यह औपशमिक सम्यक हुआ। किसी के वेदक यानी क्षयोपशमिक सम्यक होता है और कभी किसी के वेदक सम्यक्त में से क्षायिक सम्यक्त होता है। तो चौथे गुणस्थान में इनमें से कौन से सम्यक्त हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं। औपशमिक तो होता है क्योंकि हमने देखा था ये जो नए से होता है तो औपशमिक सम्यक्त पूर्वक पहले गुणस्थान से चौथे में जाता है डायरेक्ट, तो उसका औपशमिक सम्यक्त है। औपशमिक के एक अंतर्मूर्त के बाद वो क्षयोपशमिक हो जाता है और कोई जीव पुरुषार्थ करता है तीर्थंकर के पादमूल में उसको क्षायिक भी हो जाता है। ये तीनों भाव सिद्ध करते हैं। अब हम ये बीच में बहुत सारे प्रश्नोत्तर है, हम थोड़ा आगे बढ़ के कितने कितने होते हैं उसकी जरा चर्चा करेंगे, फिर इसके प्रश्नोत्तर फिर दोबारा आ जाएंगे। देखो, हाँ देखो देखो, बहुत अच्छा। ये पांच अभी हमने जहां पढ़ा ना उसके नीचे तीसरा पॉइंट जो है ना, थ्री लिखा है, पांच भावों के संबंध में कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, ये भगवान के हुआ है वहां भावना के समान करना, समय भावना के समय, प्रश्न में भी और उत्तर में भी भावना के समय, भावना करना, भावना यानी उसरूप होना, एकाग्र होने को भावना करना कहते हैं। भावना करना यानी इच्छा करना, ऐसे नहीं है। हम कहते ना मुझे ऐसी भावना हुई कि मैं स्वाध्याय में जाऊं, वो भावना का अर्थ नहीं है यहाँ। भावना करना ने एकाग्र होना, उस रूप भवन, भवन संस्कृत शब्द भवन है ना, उस रूप होना, ये भावना, भावना के समय ने ध्यान के समय। इन पांचों में से कौन सा भाव ध्यान करने योग्य है अर्थात ध्येय है? क्या कहना चाहते हैं? हमें ध्यान करना है, तो इन चार पर्याय रूप भावों में से किसका ध्यान करना चाहिए सरला बेन? बहुत अच्छा, पर्याय का ध्यान नहीं करते। अरुणा बेन ख्याल में आता है? क्षायिक भाव भी हो वो पर्याय है, पर्याय का ध्यान नहीं करते। तो वो ध्यान का ध्येय कौन सा है, किसका ध्यान करना है, क्या हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, किसका ध्यान करने ने हमारे ध्यान का ध्येय? देखो ध्यान तो सब सिखाते हैं ध्यान कैसा करना, परंतु ध्यान किसका करना है इसमें भूल रह जाती है। हमें अपना ध्यान करना है तो मैं कौन हूं ये पहले निश्चित किए बिना हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं और फिर ऐसे ही भटक जाते हैं। तो यहां क्या पूछा, कौन सा भाव ध्यान करने योग्य है यानी ध्येय है? उसका उत्तर, भावना के समय, ये करेक्शन किया वहां प्रिंटिंग हुआ है भगवान के समय, उसको करना भावना के समय।
भगवान के समक्ष कर
दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान भगवान के समक्ष करने से क्या होता है, भावना, जब हम ध्यान करते हैं तो हम एकांत हैं, हम बाजू में भगवान है कि दूसरे जीव बैठे कि हमारे बच्चे बैठे क्या, कुछ नहीं। जब हम अपने आप में एकाग्र हो जाते हैं तो किसके सामने उससे कुछ मतलब नहीं है। तो भावना के समय पारिणामिक भाव ध्यान करने योग्य अर्थात ध्येय है। किसका ध्यान करना है? पारिणामिक भाव का। ध्यान कौन करेगा, पर्याय करेगी क्या पारिणामिक भाव ध्यान करेगा? ध्यान करने वाली तो पर्याय है, परंतु ध्यान किसका करेगी तो स्वभाव का, क्योंकि स्वभाव कायम रहने वाला है। हमको ध्यान उसी का करना है जो कायम रहता है। ध्येयभूत द्रव्य रूप शुद्ध पारिणामिक भाव, ये पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है और अन्य चार भाव कैसे देखे हमने, पर्याय रूप है। तो जो ध्येयभूत यानी जो ध्येय है हमारा, जिसका हमको ध्यान करना है, वो कौन सा है, द्रव्य रूप है। उसका नाम क्या है, शुद्ध पारिणामिक भाव। ये शुद्ध शब्द क्यों लगाया, क्योंकि हमने तीन प्रकार के पारिणामिक देखे थे, एक जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो भव्यत्व का ध्यान करना क्या अभव्यत्व का? हाँ बोलो। हाँ भव्यत्व का, आप क्या कहते हैं अर्णा बेन, भव्यत्व पारिणामिक का ध्यान करना के अभव्यत्व का? शिल्पा जी दोनों का नहीं, यह तो योग्यता रूप भाव है, वो तो शुद्ध पारिणामिक भाव नहीं है। शुद्ध पारिणामिक भाव यानी अनादि अनंत कायम रहने वाला जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो हमारा स्वभाव भाव है उसका ध्यान करना है। ये भव्यत्व अभव्यत्व तो जीव की योग्यता की बात है, इसलिए उसको पारिणामिक कहा है। परंतु जिसका ध्यान किया जाता है वह परम पारिणामिक भाव कौन है, तो अनादि अनंत कायम रहने वाला जीवत्व। ये जिसको हम ये जी रहा है अभी मर गया है, वो दस प्राण वाला जीवत्व भी नहीं लेना यहां, उसकी भी बात नहीं है। हमें ध्यान करने हैं अनादि अनंत शुद्ध एक रूप परम पारिणामिक भाव की, उसका ध्यान करना है। तो ये त्रिकाल रहते इसलिए वे ध्यान करने योग्य है। किसके पारिणामिक भाव, इसीलिए बताए तीन भेद, क्योंकि ये कर्मों के निमित्त से नहीं होते और वो उसमें चेंज नहीं होते। कोई अभव्य जीव भव्य नहीं बन जाता, जो अभव्य अनादि से अभव्य ही रहता है, और भव्य है वो जब तक उसका भव्यत्व प्रकट होकर सिद्ध नहीं होता तब तक तो उसको भव्य कहेंगे, और बाद में वो तो सिद्ध हो चुका तो भव्यत्व गुण उसका प्रकट हो गया पूर्ण रूप से। इसलिए जो अनादि अनंत ऐसा जो भाव है वो जीवत्व, जो शुद्ध पारिणामिक भाव कहा उसको, पर्याय रूप नहीं, उसका ध्यान करना है। उसका ध्यान करना है वह मैं हूं ऐसा जानकर उसमें स्थिर हो जाना है, उसी को जानते रहना है।
320 गाथा की टीका में आता है जैसे ने जाने की, इसमें जीवत्व रूप शब्द नहीं आएगा जैसे ने जाने की टीका।
हाँ देखो ये जीवत्व हर जगह नहीं लिखे, कहीं पारिणामिक भाव लिखेंगे, कभी उसी को ज्ञायक भाव लिखेंगे, कभी उसी को कारण शुद्ध पर्याय लिखेंगे, अभी जहां जिस अपेक्षा से लिखा है। परंतु भाव तो यही है जिसका हम ध्यान करते हैं, जिसमें को हमने मैं कहा है, मैं कौन हूं। तो जो जहां जीव का शुद्धपना, जीव का जीवत्व, जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव जो है, जो अनादि अनंत कायम रहता है उसको यहां पारिणामिक भाव कहा है। आचार्यों की ऐसी करुणा होती है कि अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षा से बात भी करते हैं। अभी समय सार में उसी को शुद्ध ने कहा अभेद अखंड एक आत्मा ऐसा कह दिया। अभेद क्यों कहा? ये पर्याय रूप भेद वहां गौण कर दिए इसलिए वहां अभेद कह दिया है। देखो आगे का प्रश्न पढ़ लेते। देखो पारिणामिक भाव के आश्रय से होने वाला ध्यान, क्या कहा? पारिणामिक भाव को ध्येय बना दिया, उसका आश्रय किया ने उसको ध्येय बनाया और उसके आश्रय से ध्यान किया यानी उसमें हम एकाग्र हो गए। भावना के समय, यहां क्या लिखा है? भगवान के समय के भाग भावना के समय। तो हमने जो करेक्शन किया था योग्य है ना। तो भावना के समय ध्येय क्यों नहीं है, क्या कहा है प्रश्न? कोई समझ में आ रहा है प्रश्न? यहां कहते हैं ध्येय का तो ध्यान करना, तो ध्यान रूप जो अवस्था है जो पर्याय है वो ध्यान का ध्यान करना कि नहीं करना,
मतलब पर्याय की पर्याय।
एक फिर देखो पारिणामिक भाव के आश्रय से होने वाला ध्यान भावना के समय ध्येय क्यों नहीं है, जो ध्यान रूप अवस्था है उसका ध्यान करना कि नहीं करना, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं यह ध्यान स्वयं पर्याय है, पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है, पर्याय द्रव्य में एकाग्र हो गई है, उस पर्याय का ध्यान नहीं करना है। समझ में आता है क्या कहना चाहते? इसलिए विनश्वर है, विनश्वर है ने विनाशिक है, एक समय वाली, उत्पाद व्यय ध्रुव वाली, उत्पाद और व्यय वाली है। पर्याय के आश्रय शुद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती, भले वो शुद्ध पर्याय भी क्यों न हो, क्षायिक पर्याय भी क्यों नहीं हो, पर्याय के आश्रय से शुद्ध पर्याय नहीं होती। आश्रय तो स्वभाव का किया जाता है, तब पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, इसलिए वह ध्येय नहीं है। देखो ये पारिणामिक भाव की बात थी जो आपने पूछी थी ना जीवत्व वाली। आगे का प्रश्न है शुद्ध और अशुद्ध भेद से पारिणामिक भाव के दो प्रकार नहीं है किंतु पारिणामिक भाव शुद्ध ही है, क्या यह कहना ठीक है? प्रश्न में ही पूछ लिया कि पारिणामिक भाव को शुद्ध ही कहो, अशुद्ध पारिणामिक है ही नहीं, क्या यह कहना ठीक है? तो कहते हैं यह ठीक नहीं है। यद्यपि सामान्य रूप से पारिणामिक भाव शुद्ध है, उसके लिए द्रव्यार्थिक ने से नहीं सामान्य कथन से, तथापि विशेष रूप से, विशेष रूप ने उसके अगर हम भेद करके समझाते हैं तो अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है। भी का अर्थ क्या होता है? शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, दोनों प्रकार के हैं। जब हम अकेला पारिणामिक भाव कहेंगे तब हम वो शुद्ध पारिणामिक की चर्चा कर रहे हैं, परंतु जब पारिणामिक भाव के हमने तीन भेद बता दिए तो उसमें शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। इसलिए जीव भव्य अभव्यत्वानी च इस सातवें सूत्र से पारिणामिक भाव को जीवत्व भव्यत्व करना, वो बीच में न आ गया है, और अभव्यत्व तीन प्रकार का कहा है। हमने तीन प्रकार के पारिणामिक भाव देखे थे यहां पर, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। उनमें से जो शुद्ध चैतन्य रूप जीवत्व है वह अविनाशी शुद्ध द्रव्याश्रित है। क्या कहते हैं? हमने तीन प्रकार के देखे, कौन से? जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। वहां जीवत्व यहां किसको कहना है? शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप जो जीव का स्वभाव भाव है वो कैसा है? वो द्रव्य का स्वभाव है, इसलिए उसको द्रव्याश्रित कहा, इसलिए उसे शुद्ध द्रव्याश्रित नाम का शुद्ध पारिणामिक भाव समझना चाहिए। ये जीवत्व की बात हुई। अब कौन दोनों बचे? अभव्यत्व और भव्यत्व। और जो दस प्रकार के द्रव्य प्राणों से पहचाना जाता है ऐसा जीवत्व, जो हम कहते ना ये जीव है, अभी ये जी रहा है, कैसे समझा? दस प्रकार के प्राण कौन कौन से है, कौन कह सकेगा दस प्राण कौन से है? आप कहते पांच इंद्रिय मन वचन काय और श्वासोश्वास और इसमें कोई करेक्शन करना चाहता है? पांच इंद्रियां जड़ है, मनोवचन काय भी जड़ है, और हमने तो प्राणों की चर्चा की है। आपको ऐसा कहना चाहिए, पांच इंद्रिय प्राण, इंद्रियों के द्वारा जो जीव जो जानने का कार्य करता है उसको इंद्रिय प्राण कहने में आते हैं। नहीं तो अरिहंत भगवानों के तो कितनी इंद्रिया है, पांचों इंद्रिय है, पर इंद्रिया है, जड़ इंद्रिया है उनके, परंतु इंद्रियों के द्वारा जानने का कार्य नहीं कर रहे, तो उनके इंद्रिय प्राण नहीं है। ख्याल में आता है ना। अभी उनके मन वचन काया है कि नहीं है, जो द्रव्यमन पहले से बना है वो वहां पड़ा रहेगा ना, उसका यूटिलाइजेशन नहीं, उसके द्वारा जानते नहीं है, तो वहां वो जो हमने दूसरे तीन बताया आपने, वहां काय बल प्राण, वचन बल प्राण और मन बल प्राण ऐसा कहना। और फिर श्वासोश्वास प्राण और आयु प्राण, ऐसे दस प्रकार के प्राण होते हैं संगी पंचेंद्रिय जीवों को। तो यहां कहते हैं ये जो जीवत्व है कौन सा, द्रव्य प्राणों वाला, और मोक्ष मार्ग की योग्यता वाला भव्यत्व और अयोग्यता वाला अभव्यत्व ये कैसे है, पर्याय आश्रित है। शुद्ध पारिणामिक किसके आश्रय से था, द्रव्य के आश्रय, और ये पर्याय के आश्रय यानी योग्यता वाले भाव है, इसलिए उन्हें पर्यायार्थिक नाम के अशुद्ध पारिणामिक भाव समझना चाहिए। ये भाषा है ना, हमें अटपटी लगती है क्योंकि ये भाषा से हम परिचित नहीं है, इसलिए मैं इसके आधार से पढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि एक एक वाक्य पढ़ू और समझाऊ तो उसमें वो बहुत कठिन हो जाता है। हम अपनी भाषा में समझेंगे और आप बाद में पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा। हाँ, इसलिए हम पहले इसमें कौन कौन से कितने प्रकार है उसको समझेंगे और फिर उसकी चर्चा करेंगे तो अधिक आसान हो जाएगा। देखो अभी हम दो नंबर का सूत्र निकालते हैं, ये स्पष्टीकरण जो है बहुत अच्छा है, परंतु उसमें नयों की भाषा आती है, उसमें और भी गंभीर चर्चा आती है, अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, परंतु अभी हम छोटे हैं ना, तो क्रम से थोड़े बढ़ेंगे तो ये बातें हमें समझ में आएगी, इसलिए अभी हम आगे बढ़कर दूसरा सूत्र देखेंगे और फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर ओरिजिनल उस पर आ जाएगी जहां से छोड़ा है, और आप तो स्वयं पढ़ भी सकते हैं, परंतु अभी हम क्रम यानी उसके प्रकार कितने हैं, उसके भाव कितने कितने हैं, उसकी चर्चा करके फिर कालांतर से इस पर फिर दोबारा आएंगे। देखो ये दूसरा नंबर का जो सूत्र है, भावों के भेद बताया है, 187 पान है, पृष्ठ है हिंदी में, पुस्तक में जो है यथायोग्य गुजराती में देख लेना आप। तत्वा सूत्र आपके पास जीरोक्स दी है, उसमें पेज नंबर 187 है। भावों के भेद नाम का जो दूसरा नंबर का सूत्र है उसमें हम पढ़ते हैं, द्वि नव अष्ट दशैक विंशति ति भेदाहा यथाक्रमम। ये जो उपरोक्त, उपरोक्त का अर्थ होता है ऊपर, उक्त यानी ऊपर बताए हुए पांच भाव, यथाक्रमम यानी क्रमशः अनुक्रम से। सूत्र में अभी फिर दोबारा नाम नहीं लिखे हैं, पहले सूत्र में नाम लिख दिए हैं, वहां नाम का कौन सा क्रम था, पहला कौन सा लिखा था, औपशमिक लिखा था। अभी जहां पहले नंबर कौन सी संख्या लिखी है, पहले में पहले द्वि यानी दो, इसको कहते यथाक्रम, जिस क्रम से भावों के नाम लिखे हैं उसी क्रम से यहां संख्या बताई जा रही है, ये सूत्र की विशेषता है। बार बार अभी नाम नहीं लिखेंगे, पहले हमने देखा था ना सूत्र मिनिमम पॉसिबल शब्दों में उसको लिखते हैं, तो यथाक्रम से द्वि यानी दो, नौ, अठारह, इक्कीस और तीन भेद वाले हैं। हमने किस क्रम से देखे थे औपशमिक आदि भाव, औपशमिक वाले यहां दो लेना, ये नौ किसके हो गए, क्षायिक भाव नौ है, अठारह कौन से भाव है, क्षायोपशमिक भाव अठारह है, इक्कीस कौन से है, औदयिक भाव इक्कीस है, और तीन पारिणामिक भाव है। इस यथाक्रम का अर्थ है अनुक्रम से इतने इतने होते हैं। अब ये कौन कौन से हमने बहुत पहले भी देखा था, औपशमिक भाव दो कौन से होते हमने देखे थे, याद है कौन से, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, उसकी भी हमने चर्चा की थी। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव दोबारा सम्यक तो प्राप्त, ये सॉरी प्रथम बार सम्यक तो प्राप्त करता है तो उसको औपशमिक सम्यक तो होता है, वहां कर्मों में उपशम हो जाता है। उपशम होने ने निरंतर उदय हो रहा था वो अभी दब जाता है और यहाँ जीव के सम्यक तो प्राप्त होता है, उसको कहते हैं औपशमिक सम्यक। और जब जीव द्वितीय उपशम सम्यक तो करे या क्षायिक सम्यक दृष्टि हो और वो चारित्र मोहनीय का उपशम करते करते श्रेणी चढ़ता है उपशम श्रेणी, तब उसको ग्यारहवें गुणस्थान में औपशमिक चारित्र प्राप्त होता है। ये दो भाव है औपशमिक के। अब यहां आगे बढ़ते हैं। ये औपशमिक के दो भाव हमने देखे, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र।
अब
हाँ देखो, आपका प्रश्न है औपशमिक सम्यक तो चौथे गुणस्थान वाले को प्राप्त होता है ना, तो देखो औपशमिक सम्यक तो की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऐसी है कि जब जब जीव मिथ्यात्व में से विशिष्ट कर्मों का उपशम करके आगे के गुणस्थान में जाता है यानी सम्यक तो प्राप्त करता है, तब उसको औपशमिक सम्यक तो कहते हैं। अब वो पहले में से औपशमिक के साथ चौथे में भी जा सकता है, पहले से डायरेक्ट पांचवें में भी जा सकता है और पहले से डायरेक्ट सातवें में भी जा सकता है। उसके लिए कैसी कंडीशंस होती है वो सब गुणस्थान में आने वाली है। तो यह औपशमिक सम्यक्त्व के साथ उसको सातवां हुआ, फिर वो छठे में आया और औपशमिक सम्यक्त्व के काल में हजारों बार छठा सातवां होता रहेगा, या औपशमिक के साथ वो पांचवें में आता है, औपशमिक के साथ चौथे में भी आता है। अब हम क्षायिक भाव देखते हैं, उसके भेद आगे के चौथा नंबर का सूत्र नहीं, तीसरा कहाँ गया? हाँ हाँ हाँ, मैंने इसको औपशमिक भाव के दो भेद, तीसरा नंबर का सूत्र सम्यक्त्व चारित्रे, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, इस प्रकार औपशमिक भाव के दो भेद है। वे कौन से भेद है हमने बार बार बहुत बार देखा था। अब चार नंबर का सूत्र, आपको लगेगा कि बहुत फास्ट दौड़ रहे हैं, हम इसके थोड़े भेद देखकर फिर उसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। अब क्षायिक भाव के नौ भेद है, ये चार नंबर के सूत्र में बताया है। हम सूत्र पढ़ते हैं 188 पृष्ठ पर। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च, अर्थ ज्ञान दर्शन लाभ दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि। देखो ये जो ज्ञान दर्शन तो समझ में आता है, ये दान लाभ भोग उपभोग वीर ये जीव के गुण हैं और उसके स्वभाव पर्याय प्रकट होती है, पूर्ण स्वभाव पर्याय। और उसको लौकिक भाषा में हमको समझाना है तो दान का अर्थ तो हम समझते हैं, लाभ यानी हमको कोई लाभ हो जाता है, भोग का अर्थ है और क्या, और उपभोग का क्या है अतुल जी मालूम है?
एक बार किसी चीज को भोगना वो भोग है।
एक बार भोगना वो भोग है और बार बार भोगना वो उपभोग है। जैसे डिस्पोजेबल थाली में खाना खाना वो क्या है? भोग है। और वो स्टील की थाली वो उपभोग है, बार बार भोगते ना उसको, क्यों सर लगे नहीं मालूम? और वीर्य, देखो ये तो समझाने के लिए हम वो दान देना भोग करना ऐसे समझाते हैं, परंतु जीव स्वयं को ही वो अतीन्द्रिय सुख का दान देता है, वो उसी का लाभ होता है, उसी को भोगता है, उसी को उपभोग करता है, उसी को वो पुरुषार्थ करता है। वीर्य ने बल है ना उसमें, उसका अपने स्वभाव की रचना करना, ये उसका वीर्य उनका कार्य है। तो ये स्वयं में ही होता है और ये उसके गुण है। तो कहते हैं केवल ज्ञान केवल दर्शन क्षायिक दान क्षायिक लाभ क्षायिक भोग क्षायिक उपभोग क्षायिक वीर्य तथा च कहने पर क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, इस प्रकार क्षायिक भाव के नौ भेद हैं। देखो क्षायिक भाव किसे कहना, उसकी डेफिनेशन दी यहां। देखो जीव जब ये केवल ज्ञानादि भाव प्रकट करता है, प्रकट करना यानी ये किसकी बात चल रही है, स्वभाव की क्या पर्याय की, जो नहीं था वो प्रकट किया ना, पर्याय की बात है, यानी पर्याय में उसके केवल ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं, तब द्रव्य कर्म, ये द्रव्य कर्म किसे कहते हैं आपको मालूम है? हाँ बेटा आपको पता है द्रव्य कर्म किसको कहना, क्या कहते? अष्ट कर्म को द्रव्य, बहुत अच्छा है, आपको पता है क्या? नहीं आपको नहीं मालूम। देखो हम जब कहते सिद्धों का वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं, वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित है। तो द्रव्य कर्म से रहित है का क्या अर्थ होता है, आठों ही कर्मों से रहित है, यानी कर्म बंध जो था अनादि से वो अभी पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। भाव कर्म यानी क्या निरिंदे आपको पता है? हाँ, मोह राग द्वेष आदि जो जीव के विकारी भाव है उसको कहते हैं भाव कर्म। और नो कर्म है क्या जयबेन?
नो कर्म माने शरीर और दूसरे जो संयोगी,
हाँ शरीर मन वाणी आदि है वो नो कर्म। तो सिद्ध भगवान को ना शरीर मन वाणी है, ना राग द्वेष मोह है और ना ही आठ कर्म है। तो वो कैसे है, ये तीनों प्रकार के यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित है, ऐसा उनका वर्णन करते हैं। तीन कर्म मल से रहित है, ऐसा सिद्धों का हम स्तुति भी गाते हैं। तो यहां कहते हैं कि द्रव्य कर्म यानी ये जो आठ कर्म है, जड़ कर्म है, स्वयं आत्म प्रदेशों से अत्यंत वियोग रूप हो जाते हैं। अत्यंत शब्द क्यों डाला? ऐसा वियोग होता है कि फिर दोबारा उन कर्मों का, विशिष्ट कर्मों का बंध नहीं होता, उसको कहते हैं अत्यंत वियोग। जब उपशम होता है तो क्या होता है, उदय में नहीं आ रहे परंतु अंदर सत्ता में पड़े रहते हैं, और उपशम का काल अंतर्मुख पूरा होता है तो उदय में आ सकते हैं। इसलिए यहां लिखा है अत्यंत वियोग होना, इन्हें आत्म प्रदेशों से बिल्कुल निकल जाना, अर्थात कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, इसलिए इन भावों को क्षायिक भाव कहा जाता है। अब इसकी जो चर्चा है और आगे क्षयोपशमिक भाव के जो भेद आदि जो बातें हैं वो हम अपने कल के लेक्चर में इसको चालू रखेंगे। चलो 2400 भगवान की जय।